Good evening, listeners, and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But of course, do remember that we do not address company-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444. 2342-1050 and 2331-0464. And of course, do prefix the code 011. To navigate you through today's show, along with Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur.
Dhanyavad Sarabjit aur namaskar shrotao, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Aaj somwar hai aur hum karobari khabron ke saath aapke prashno ko bhi karyakram mein shamil karenge. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 2331-4444-2342-1050 और 2331-0464। इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। और चलिए पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ सरबजीत।
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस क्लोज मार्जिनली डाउन, सेंसेक्स स्लिप्स ओवर 50 पॉइंट्स, निफ्टी होल्ड्स 26,000 लेवल। India's exports surge over 15% to nearly $74 billion in November this year. Engineering, electronic goods, pharmaceutical among key drivers. And India's wholesale inflation stays in negative zone at 0.32% in November.
कारोबारी सप्ताह के पहले दिन देश के शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 50 अंक से ज्यादा गिरा, निफ्टी 26,000 के ऊपर बना रहा। इस साल नवंबर में भारत का निर्यात 15% से ज्यादा बढ़कर $74 अरब पर पहुंचा। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और फार्मा क्षेत्रों का अच्छा प्रदर्शन और नवंबर में भारत की थोक मुद्रास्फीति की दर 0 से नीचे -0.32% पर रही। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर बाजार पर नजर डालते हैं।
एंड ऑफ कोर्स बिफोर दैट, उससे पहले जी हां, डिस्क्लेमर। The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
जी, और देखें शेयर बाजार में क्या रहा। आज देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी पिछले दो कारोबारी दिनों की बढ़त के बाद आज थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। वैश्विक संकेतों की वजह से दोनों सूचकांक आज काफी गिरावट के साथ खुले थे, लेकिन बाद में बाजार थोड़ा संभला और अंत में सेंसेक्स महज 54 अंकों के नुकसान के साथ 85,213 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 20 अंक नीचे 26,027 पर आ गया। लेकिन बीएसई के मिड कैप सूचकांक में 0.1% की बढ़त रही और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.4% बढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल 30 में से ये कंपनियों के शेयर तो हम बाद में देखेंगे। सरबजीत, आप थोड़े डिटेल्स इंग्लिश में बता दें पहले।
जी, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस द सेंसेक्स एंड द निफ्टी क्लोज्ड मार्जिनली डाउन टुडे, स्नैपिंग देयर 2-day rising streak. Both indices opened the week in the negative zone amid weak global cues. Later, they paired some of the losses and settled with slight dip. The Sensex lost 54 points to close at 85,213, while the Nifty slipped 20 points to settle at 26,027. However, the broader market indices at the Bombay Stock Exchange ended in positive territory. The mid-cap index added over 0.1%, while the small-cap index advanced 0.4%. And Subodh, aapke paas details hain?
Haan, ji. कि आज 30 जो सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियां हैं उसमें से 16 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में बंद हुए हैं। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.9% से ज्यादा, मारुति में 0.9% और अडानी पोर्ट्स में 0.8% की गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में 1.4% की बढ़त के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर में 0.8% की बढ़त देखी गई और ट्रेंट और HCL टेक ये दोनों भी बढ़े। ट्रेंट में 0.7% की बढ़त रही और HCL टेक में भी थोड़ी बढ़त देखी गई।
And across sectoral indices at the BSE, 15 out of 21 sectors registered gains in the top gainers. FMCG climbed around 0.6%, services rose over 0.5% and industrials added 0.5%. Among the top laggards, telecommunication dropped 0.9%, auto lost almost 0.9% and healthcare as well as consumer discretionary fell 0.25% each. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,238 companies advanced, 2,033 declined and 178 remained unchanged.
और आज अगर हम देखें सरबजीत, तो काफ़ी जो बाजार का उतार चढ़ाव नज़र आ रहा था आज सुबह से
जी।
जिस तरह से बाजार में जो गिरावट थी जितनी, बाद में बाजार काफ़ी संभला है और काफ़ी ऊपर आकर बंद हुआ है, क्योंकि जितनी गिरावट थी उससे लग रहा था कि कहीं आज फिर लुढ़के ना, लेकिन काफ़ी संभल गया बाजार। तो आज के शेयर बाजार की ये खासियत रही है
जी। वी ऑल्सो वेलकम आर फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिस्टर अमन अग्रवाल, हु शैल बी टेकिंग यू नो द कॉल्स फ्रॉम आर लिसनर्स एंड वी आर ऑल सेट टू गो अहेड इन द प्रोग्राम।
जी अमन जी, आपका स्वागत
है। नमस्कार
जी। और अभी हम चर्चा कर रहे थे आज शेयर बाजार की कि क्या हालत रही है, लेकिन चलिए उस पर वक्त मिलेगा तो आपसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक कॉलर ऑनलाइन है हमारे साथ, विनय दिल्ली से। स्वागत है विनय, सवाल पूछें।
नमस्कार सभी मेहमानों का।
नमस्कार।
एक मुझे एआई सेक्टर में काफी इंटरेस्ट था, तो 3 साल पहले एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया मैंने एआई में, और काफी अच्छी ग्रोथ भी है। लेकिन कई लोग कहते हैं एआई एक बबल है, और रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने भी $17.5 अरब का इन्वेस्ट करने का अनाउंस किया अगले 4 साल। तो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि एआई सेक्टर के बारे में आउटलुक क्या आप लोग समझते हैं एक्सपर्ट।
देखिए जी, एआई एक रियलिटी है जो क्लियरली आ रही है, बट जो एआई की कंपनीज हैं कौन सी कितना इम्प्लीमेंट कर रही हैं, कितना इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं, उनकी सक्सेस रेशियो क्या रहेगी, वो क्लियर नहीं है अभी भी। बिकॉज काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता कि एआई क्या है। बिकॉज एआई जो होता है एक मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग के थ्रू स्ट्रक्चरिंग किया जाता है, जिसे एल्गोरिदम्स के अंदर भी हम कहते हैं और पहले भी करते आए हैं एल्गोरिदम्स को, पर उसको नया नाम एआई दिया गया है, जो अपने आप ही उसको जैसे ब्रेन फंक्शन करता है ऐसे फंक्शन करता है। तो ये पॉसिबल है और हो भी रहा है, और डिफेंस के अंदर काफ़ी क्षेत्रों में इसका किया जा रहा है। बट ये कहें कि वो सक्सेस दिला पाएगा उस कंपनी को, और इतनी सारी कंपनीज अब एआई क्लेम कर रही हैं, उनके पास एआई है भी या नहीं, इस चीज़ की चिंताजनक बात है, पर रियलिटी है।
एंड लेट्स हियर व्हाट आवर नेक्स्ट कॉलर हैज टू आस्क। अमित जी अपना सवाल पूछें।
हाँ नमस्कार सभी को। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि इन्फ्लेशन जो है होलसेल जो माइनस में आ गई है,
हाँ
तो क्या ये अच्छे संकेत है, क्या इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दूसरी चीज सर कि जो डेरिवेटिव मार्केट से रिलेटेड पूछ सकते हैं सर।
हाँ बिल्कुल। हाँ जी देखिए, ऐसा है जो इन्फ्लेशन नेगेटिव आया है ये दिखाता है कि जो उसमें वृद्धि हो रही है, जैसे हम ग्रो करते हैं, एक बच्चा ग्रो करता है उसमें हम हर रोज देखते हैं हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, बड़ा होता जाता है, एक हाइट बढ़ती है, फिर जाके स्टेबल आ जाता है। इसका मतलब उसके बाद फिर अगर वो झुकने लगता है तो हम कहते हैं ये इसकी हाइट कम होती जा रही है, वो नेगेटिव। ये जो ग्रोथ है इन्फ्लेशन के अंदर वो कम हुआ है, वो नेगेटिव हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन नहीं है मार्केट के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो महंगाई में वृद्धि हो रही थी, बढ़ोत हो रही थी, वो नेगेटिव गई है। और देखिए कुछ समय नेगेटिव तो ठीक है, पर ज़्यादा समय नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एक वृद्धि देखी जाती है वो ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट करती है, और एक जो उपभोक्ता होता है उस ग्रोथ के माध्यम से ही मार्केट में निवेश करता है।
एंड आवर नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम फरीदाबाद. सुभाष जी अपना सवाल पूछें.
सर मैं सुभाष बोल रहा हूँ फरीदाबाद से.
हाँ नमस्कार.
तो मैंने सर ITR भरा था 2025-26 का.
अच्छा जी.
तो उसमें ना कंप्लीट मैंने स्टेटमेंट दी थी सारा कुछ, जो कितना टैक्स मेरी लायबिलिटी थी वो भी भर दिया था. उसके बाद मेरे पास रिफंड भी आ गया था सर.
अच्छा जी.
अक्टूबर में. उसके बाद अभी सर मेरे पास 11 तारीख को एक मेल आया है कि आपको है ना ये इनकम टैक्स रिटर्न दोबारा भरना पड़ेगा. तो सर जब मेरे पास रिफंड आ गया, सब कुछ हो गया, मेरा प्रोसेस भी हो गया, वो उसके बाद ये मेल का सब मतलब लॉजिक समझ नहीं आया.
देखिए जी, ये इस बार सरकार उसको चेक कर रही है, आपके रिटर्न्स को चेक कर रही है. कहीं पे भी AIS के साथ अगर मिसमैच हो रहा है, जो AIS में रिपोर्टिंग हुई है, तो सरकार का माध्यम है वो आपसे कह सकती है. और ये आपको जानना चाहिए कि कोई भी आपकी ITR चाहे आपकी हो या कंपनी की हो, 3 साल तक उसको खोला जा सकता है. भारत सरकार के पास राइट है. पहले एक समय था जब 7 साल तक होता था, इस समय 3 साल तक की जो आयकर होती है आपकी, उसमें कोई भी प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है. और वो आपको एक बार देखना जरूर होगा, जो अपना पोर्टल है, आपका जो इनकम टैक्स का पोर्टल है, उसमें लॉगिन करिए और वहां पे जाके चेक करिए कि वहां पे क्या चीज मांगी जा रही है. अगर कोई चीज है जिसको आप किया जा सकता है, उसको रिप्लाई करना है, उसमें सारे ऑप्शन होते हैं. वहां पे आप एक क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं अपना पोजिशन.
जी, अगले कॉलर है बिहार से टिंकू. स्वागत है आपका, सवाल पूछे. टिंकू, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? लगता है इनके साथ हमारा संपर्क नहीं है. हम चलते हैं गाजियाबाद. लगता है इनसे भी अभी कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम रुपए की हालत पर जरा नजर डाल लें सरब जी, तब तक कि अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 31 पैसे के नुकसान के साथ अब तक के सबसे निचले स्तर 90.73 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया. डॉलर इंडेक्स 98.29 के आसपास दर्ज हुआ है. और एशियन मार्केट्स पर भी नज़र डालें हम, ज़्यादातर एशियाई बाज़ारों में आज गिरावट देखी गई. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.8% गिरा, हांगकांग के हैंगसेंग और जापान के निक्केई दोनों में 1.3% से ज़्यादा की गिरावट रही. चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.5% से ज़्यादा गिरा. सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम सूचकांक में हल्की बढ़त देखी गई. यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में तेजी दिखाई दे रही है. समाचार लिखे जाने तक फ्रांस का कैक लगभग 1.1%, लंदन का फुटसी 0.9% से ज्यादा और जर्मनी का डैक्स 0.4% से ऊपर कारोबार कर रहा था. तो ये अमन, हम देखें तो आज अपना तो जो हमारा सेंसेक्स में आपने देखा कि शुरुआत में काफी गिरावट थी, लेकिन बाजार चलो थोड़ा संभला है, कुछ आंकड़े रहे और बाकी सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं. लेकिन ये जो अभी शुरुआती कारोबार है यूरोप का, ये बड़ा मजेदार लग रहा है, काफी अच्छी तेजी दिख रही है. फ्रांस का कैक 1.1% ऊपर.
देखिए जी, ऐसा होता है कि दिसंबर का जो महीना होता है यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए और काफी सारे एशियन देशों के लिए भी, वो उसको फाइनेंशियल ईयर मानते हैं, कैलेंडर ईयर को, मतलब जनवरी से दिसंबर.
हाँ, उनका दिसंबर में खत्म.
हमारा जैसे 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक जाता है हिंदुस्तान में, ऐसे ही अमेरिका, यूरोप, काफ़ी सारे एशियन देश है, जैसे हांगकांग है, वहाँ पे सब जगह वो जनवरी से दिसंबर लेके चलते हैं. तो जब वो दिसंबर लेके चलते हैं, तो जो बाकी देशों में जहाँ पे उन्होंने निवेश कर रखा होता है, FI इंस्टीट्यूशंस ने वो निवेश वो निकालते हैं ताकि अपनी बैलेंस शीट को अच्छा दिखा सकें. तो जब उनकी बैलेंस शीट अच्छी दिखेगी, तो नेचुरली उनके देश में तो जो उनके स्टॉक एक्सचेंज हैं वो तो बढ़ेंगे ही, पर जो बाकी देश है जहाँ से वो निवेश निकाल रहे हैं, इसे आप देखेंगे कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारे थोड़े कम हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, वो जो निकालेंगे तो नेचुरली वहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी और जो उनके अपने देश हैं वहाँ पर उछाल देखने को मिलेगा.
मीनवाइल आई सी सम मोर कॉलर्स लाइंड अप. रमेश जी अपना सवाल पूछें.
नमस्कार
सर, मैंने ना सर 1991 में सर जी मैंने नेशनल सेविंग स्कीम में सर जी मैंने सर्टिफिकेट लिए थे 45,000 रुपए सर जी मैंने.
अच्छा जी.
सर जी मैं पोस्ट ऑफिस में एंट्री कराने के लिए गया, तो उन्होंने बोला कि आप ये विड्रॉ कर लीजिए, कंपनी ने गवर्नमेंट स्कीम बंद कर दी है ये.
अच्छा.
तो सर मैं अब ये जानना चाहता था, मैं अगर सर वो पैसा निकालता हूँ लगभग सर वो 7 लाख रुपए हो गया सर आज वो, तो सर जी क्या वो टैक्सेबल इनकम बनेगा कि नॉन टैक्सेबल बनेगा सर?
देखिए, जो नेशनल सेविंग स्कीम्स का था, जब तक वो पैसा पड़ा होता है उसमें टैक्स नहीं कटता है, पर जब भी आप विड्रॉ करते हैं उस समय वो आपको TDS काट के ही देंगे. और अगर आपका टैक्सेबल लिमिट में नहीं बैठता है तो उस TDS जो कटेगा उसको आप क्लेम कर सकते हैं अपनी टैक्स रिफंड के अंदर, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके अंदर. पर वैसे जो वो देंगे जब आपको तो वो काट के ही देंगे आपको
भाई। और देखें कि निर्यात के क्या आंकड़े रहे। इस साल नवंबर में देश का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा कम होकर 24 अरब 53 करोड़ अमरीकी डॉलर्स पर आ गया है। सोने, तेल और कोयले के आयात में कमी आने की वजह से घाटा कम हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी तात्कालिक आंकड़ों में कहा गया है कि नवंबर में वस्तु निर्यात में काफी वृद्धि हुई और ये 38 अरब 13 करोड़ डॉलर्स पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 19.4% की जबरदस्त वृद्धि है। माल आयात 1.9% की हल्की गिरावट के साथ 62 अरब 66 करोड़ डॉलर्स पर आ गया। पेश है एक रिपोर्ट।
इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम उत्पादों में मजबूत रुझान ने निर्यात विस्तार को बढ़ावा दिया। वहीं अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान भारत का कुल निर्यात 562.13 अरब अमरीकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो 5.43% की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। वस्तुओं और सेवाओं सहित कुल व्यापार में पिछले महीने 73.99 अरब अमरीकी डॉलर का निर्यात दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.5% से अधिक की वृद्धि है। इसी अवधि के दौरान आयात में मामूली गिरावट आई और ये 81.11 अरब अमरीकी डॉलर से घटकर 80.63 अरब अमरीकी डॉलर रह गया। आकाशवाणी समाचार के लिए प्राची प्रिया।
जी अमन, जो आंकड़े अभी देख रहे हैं हम वो काफी उत्साहजनक है, खासकर जो सेक्टर्स है जिनका प्रदर्शन हम देख रहे हैं। फार्मा पूरी दुनिया में भारत एक अलग छाप छोड़ रहा है।
हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। सिर्फ फार्मा ही नहीं है, डिफेंस भी है।
डिफेंस तो अभी नया जी अभी
निकला है पर काफी तेजी से बढ़ रहा है। फार्मास्यूटिकल में हम पुराने खिलाड़ी रहे हैं पर विश्व के अंदर हम अब इस समय काफी बढ़ोतरी देख रहे हैं, बिकॉज ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स हमारी अमेरिका भी जा रही हैं, यूरोप में भी जा रही हैं, अफ्रीका जैसे देशों में भी जा रही हैं और काफी उसकी मांग है।
हमारा किफायती होना काम आ रहा है
और कोविड के बाद तो खासकर हो गया है, क्योंकि कोविड की जो दवा थी वो भी हमने काफी देशों को मुफ्त में भी दी है, डोनेशन के फॉर्म में भी दी है, जो पहले नहीं देखने को मिलती थी, और काफी वृद्ध देश इस चीज को नहीं ले कर पाए हैं। तो इसलिए फार्मा के अंदर हिंदुस्तान का बड़ा तीव्र गति से नाम बढ़ा है और उसका फायदा भी हो रहा है।
और बिहार से हमारे नेक्स्ट कॉलर टिंकू जुड़ चुके हैं हमारे साथ। टिंकू जी अपना सवाल पूछे।
नमस्ते सर।
नमस्कार जी।
सर एक मैं टर्न पॉलिसी ले रखे हैं, 16,100 का है।
अच्छा जी।
और वो 41 एज है, 80 साल तक वो भरने के लिए कह रहा है। अच्छा, ये बारीक से समझाइए सर, ये सही है या अच्छा है या गलत है, इसके बारीक से समझा दीजिए।
देखिए जी, जो टर्म पॉलिसी होता है वो ये दिया जाता है ताकि जो है कल को आपको कुछ हो जाए तो आपके प्रियजनों को कुछ पैसा मिल सके, जिसको भी आप नॉमिनेट करेंगे उसके अंदर, और जिस रेशियो में आप नॉमिनेट करेंगे उस रेशियो में उनको वो पैसा मिल जाएगा टर्म पॉलिसी से। अब ये देखना जरूरी है कि वो टर्म पॉलिसी का पैसे का फायदा उनको होगा या नहीं होगा। अगर आप मनी बैक पॉलिसी जैसे LIC पहले निकालती थी उसमें जाते हैं तो बाद में जाके अगर आप ख़त्म भी कर देते हैं टर्म तो उसके बाद आपको पैसा मिलता है, बट उसमें हमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप मनी बैक वाली पॉलिसी वाले ना लें, नॉर्मल पॉलिसी लें, उसमें आपको कुछ मिलता नहीं है बट प्रीमियम बहुत कम होता है, पर एक इंश्योरेंस मिलता है कि वो पैसा मिलेगा। ये देखना भी जरूरी है कि वो पीरियड अवधि के बाद, चाहे वो 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, उसके बाद उस रुपए की कोई मूल्यांकन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी बढ़ रही है, पता चले आपने पैसा भी दिलवा दिया घर वालों को और उस पैसे के कुछ मांग नहीं। तो ये सब चीज़ें देख के आप अपनी पॉलिसी ले और उसमें फिर आगे निवेश करें। जरूरी नहीं है कि अगले 80 साल तक की आप पॉलिसी ले, अगले 10 साल की भी ले सकते हैं, 15 साल की भी ले सकते हैं, 5 साल की भी ले सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपनी पॉलिसी इंश्योरेंस अपने घर वालों को, प्रियजनों को दे सकते हैं।
मतलब आपके कहने का मतलब है कि समय समय पर उसे रिवाइज करें।
रिवाइज कर सकते हैं और वो तभी पॉसिबल अगर आप छोटे ड्यूरेशन के लिए। अगर आप बड़े ड्यूरेशन के लिए लेंगे फिर रिविजन पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज वो उत्ते की पॉलिसी, फिर एक और पॉलिसी लीजिए, फिर वो मल्टीपल पॉलिसी का आगे जाके जो आपके प्रियजन है उनको मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता, कहीं कि जी एक पॉलिसी में मिल रहा है दूसरे का नहीं देंगे, तो ये रूल्स भी आ सकते हैं
जी। और टर्म इंश्योरेंस को वैसे भी आप किसी महीने नहीं देंगे तो थोड़े दिनों में अपने आप बंद हो जाता है
वो। हाँ, अगर आप किसी समय फेल कर जाते हैं उसमें पॉलिसी है तो आप दोबारा पेनल्टी देके उसको दी जा सकता है, उसमें इंटरेस्ट लगता है, कुछ पेनल्टी लगती है, उसको देके कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाता है। बट अगर आप देंगे ही नहीं तो वो बंद हो
जाएगा। वही अगर आप बंद करना चाहें तो
देना बंद कर सकते हैं।
अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से संजीव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
जी नमस्कार सर।
नमस्कार
जी सर, मेरा सवाल ये है कि एक जो मैक्सिको ने हमारे पर 50% का एडिशनल टैरिफ लगाया है उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ कर दीजिए प्लीज। और एक छोटा सवाल दूसरा ये है कि हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट भी कम हो रहा है, हमारे H1 के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वो चीजें मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, मार्केट रिबाउंड नहीं कर पा रहा है सर।
देखिए जी, मार्केट तो मेरे विचार में रिबाउंड कर रहा है, कंपनी के रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% आया है, जबकि पिछली बार 7.23% के आसपास था, अब रिबाउंड करके 8.2, वो तो तभी पॉसिबल है जब मार्केट रिबाउंड करे और लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी मिले, कंपनियों को प्रॉफिटेबिलिटी मिले, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सबको प्रॉफिटेबिलिटी मिले, तभी हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि रिबाउंड नहीं। दूसरा, अगर आप देखें सोने का दाम तो ऐसे उछल के पहुंच गया है कि जहां आदमी को छूना भी मुश्किल हो रहा है, इतना उछला तभी है जब आदमी खरीद रहा है, और खरीद रहा है तभी वो उछला है, तो पैसा होगा तभी तो खरीदेगा वो, और इसलिए वहां पे भी उछाल देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट को देखें, जहां नेगेटिव आज शुरू हुई थी मूवमेंट के साथ, आज पॉजिटिव खत्म हुई है, तो यहां पे भी पॉजिटिविटी है। तो मेरे विचार में ये कहना कि पॉजिटिविटी नहीं है मार्केट में, हिंदुस्तान के प्रति बाहर देशों में भी और हिंदुस्तान के अंदर लोगों में भी पॉजिटिविटी है, और इसीलिए हमें उछाल देखने को मिल रही है।
Our next caller is from Maharashtra. KK Shukla ji, apna sawal poochhe.
Ji, good evening, all of you.
Good evening.
Mera question dollar se related hai. Dollar international trade ke liye use hota hai. Iska barchas adhik hai. Aisa kyon?
देखिए जी, डॉलर जो है, अब पहली बात तो हम किसी भी करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे रशिया के ऊपर ट्रेड लगने के बाद रूबल्स में ट्रेडिंग काफ़ी हो रही है वापस, जैसे बहुत पहले हुआ करती थी। अब इसी के से रुपए में भी ट्रेडिंग हो रही है, रुपए में भी काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं अलग अलग देशों के साथ जिसमें रुपये में भुगतान होगा। पहले क्योंकि डॉलर का चलन बहुत ज़्यादा हो गया था तो सब लोग उसको डॉलर प्राइसिंग के अंदर अपने बिलों को इशू करने लग गए थे, चाहे सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनियां हो, और उसी में अपना भुगतान लेने लग गए थे, बिकॉज उसका पैसा आना आसानी हो जाती थी क्योंकि जो बैंक हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, वो आराम से ट्रेड कर पा रही थी, उसको स्विफ्ट ट्रांजैक्शन भी आसान से हो पा रही थी। पर ये आज की दिशा में नहीं है, ये आज से 3 साल पहले से काफ़ी कुछ इसमें बदलाव आया है, और काफ़ी सारे देश अब बायलैटरल ट्रेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर काफ़ी सारे लोग, चाहे वो रुपया हो चाहे रूबल हो, इस तरीके से कुछ और करेंसीज हैं उनके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। डॉलर की महत्वता अभी भी है, पर यूरोप और डॉलर और हिंदुस्तान के रुपए की महत्वता काफ़ी हद तक, रुपए की मैं कहूँगा खासकर, बढ़ गई है।
All right, let's see how the WPI data looks like. India's wholesale price index based inflation remained in negative territory at 0.3% in November on an annual basis compared to a deflation of 1.21% recorded in October. On a month-on-month basis, the WPI rose by 0.71% in November, reversing a deflation of 0.13% seen in the previous month. Data released by the Ministry of Commerce and Industry showed that the negative inflation rate was mainly driven by lower prices of food articles, mineral oils, crude petroleum, natural gas, basic metals and electricity. The WPI food index recorded a deflation of 2.6% year-on-year, remaining negative for the third consecutive month. And our next caller from Delhi, Nand Gopal ji. Apna sawal poochhe.
Hello.
जी हाँ, नंदगोपाल जी सवाल पूछे।
बोलिए जी क्वेश्चन।
हाँ जी पूछिए।
मैं कह रहा हूँ, मैंने जो है एनएससी लिया था 5 साल पहले, 8th issue, एनएससी 8th issue, वो इस साल मैच्योर हुआ है, तो टैक्स लायबिलिटी बताएंगे क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट?
नहीं जी, मैं समझ गया। पहली बात तो मैं आपको कैलकुलेशंस तो नहीं बता पाऊंगा, बट जब आप उसको विड्रॉ करेंगे तो जो आपको इसका इशू करेंगे अमाउंट, उसमें ऑटोमेटिकली टीडीएस डिडक्ट होता है। बाकी आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है वो आपकी टैक्स रिटर्न के ऊपर फॉल करती है कि आप 0% वाले ब्रैकेट में फॉल करते हैं, 10% वाले में करते हैं, 20 में करते हैं, 30 में करते हैं, उसके हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी जो आपने पैसा कमाया है उसके ऊपर पड़ेगी।
तो इससे जो आमदनी हुई है वो आपके बाकी इनकम में जोड़ के उसके बाद जो टैक्स बनता है वो आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं बनता है तो नहीं देना पड़ेगा और टीडीएस वापस आ जाएगा।
अगर मैंने दिया भी है तो वापस मिल सकता है
जी। अगले कॉलर है दिल्ली से नितिन, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
हेलो नमस्कार जी।
नमस्कार
सर, जैसे कि हमने अपना एफडी ब्रेक हुआ था, हमने उसको थोड़ी सी चेंजिंग के लिए ब्रेक कराना पड़ गया था, 10-12 दिन के लिए एफडी ही नहीं थी, उसमें हमारे को इंटरेस्ट मिला था 300-325 रुपये, और उसमें हमारे को 30 रुपीज के लगभग उन्होंने टीडीएस काट दिया। ही अब आरटीआई भरना पड़ेगा, क्या ये लाजमी होता है कि आरटीआई भरना पड़ेगा? अगर आरटीआई एक साल एक बार भर दिया और हमारा टैक्स नहीं बनता तो क्या हमें हर साल आरटीआई भरनी पड़ेगी, या ये हम इसको तो आरटीआई भरेंगे नहीं क्योंकि हमारा इतना लंबा कोई अमाउंट नहीं फंसा हुआ?
देखिए जी, पहली बार जो लॉटरी का पैसा होता है उसके ऊपर टैक्स दिया जाता है। अगर टैक्स ज्यादा बनता है आपकी इनकम के हिसाब से तो आपको ज्यादा देना होगा, अगर कम बनता है तो जो टीडीएस उन्होंने काटा वो आपका जाएगा, उसमें रिफंड नहीं होता है। लॉटरी कुछ ये जो कैपिटल गेन्स वाले सेक्शंस होते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग है, लॉटरी है, इसमें जो कैपिटल गेन्स हैं वो उतना टैक्स लगता ही लगता है, वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे एक बार करें या दस बार करें।
इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट यू आर डिक्लाइन टू 4.7% इन नवंबर दिस ईयर एट इट्स लोएस्ट लेवल सिंस अप्रैल फॉर इंडिविजुअल्स एज्ड 15 इयर्स एंड अबव। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, monthly labor force and unemployment data, rural unemployment eased to a new low of 3.9%, while urban unemployment fell to 6.5%, matching the lowest reading recorded earlier this year.
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन के अम्मान पहुंच गए हैं। जॉर्डन के प्रधानमंत्री डॉक्टर जफर हसन ने उनका औपचारिक स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। ये प्रधानमंत्री की तीन देशों यानी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा का पहला चरण है।
Aman, on the economic front, how do you see this visit to the three nations?
No, I think it is going to be memorable, specifically given the dynamics we have seen after the Honorable Prime Minister has come in, where countries which do not see eye to an eye have been trading with India, like Israel, Jordan or other countries near them. Even when we come to Ukraine or Russia, when they don't see eye to eye fighting with each other, but they trade with us. So from that perspective, this will lead to positive results. And this is being welcomed by the world at large, whether it is trade or doing business, that they will profit from India's business.
Global crude oil prices dropped today. Brent crude was trading 0.5% down at $60.81 per barrel, while WTI crude was trading over 0.5% down at $57.12 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading almost 1.3% up at 1,35,550 rupees per 10 grams, and silver was trading over 3.1% up at 1,98,530 rupees per kilogram a short while ago.
और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 1.3% से ज्यादा बढ़कर 1,35,391 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च आपूर्ति वाली चांदी लगभग 3% ऊपर 1,98,755 रुपये प्रति किलो पर चल रही थी। सोने और चांदी की चमक तो देखी, कुछ छोटी सी टिप्पणी आपकी?
नहीं, मेरे विचार में सोने चांदी की चमक तो अभी रहेगी, बिकॉज अगले दो महीने तक शादियों और त्योहारों का चर्चा लगा रहेगा, एंड एज लॉन्ग एज दिस ग्रोथ ऑफ यू नो वांटिंग गोल्ड एंड सिल्वर इज देयर विद इन द कंट्री, दिस विल नॉट गो अवे। इंडियन आरबीआई इज ऑल्सो बाइंग, सो दैट मेक्स इट इवन मोर वैल्यूएबल।
अमन, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices close marginally down. Sensex slips over 50 points. Nifty holds 26,000 level. India's exports surge over 15% to nearly $74 billion in November this year. Engineering, electronic goods, pharmaceutical among key drivers. And India's wholesale inflation stays in negative zone at 0.32% in November. And that's it in the edition of Market Mantra. Until tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।